मैं सतगुरु पाके धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, 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 सतगुरु मेरे राम मिला दे, 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 मेरे राम मिला दे, सतगुरु मेरे राम मिला दे, सतगुरु मेरे, 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 धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके। गत चर्चा चली थी अंतर्मुखी होने के साथ किस प्रकार से साधक को अंतर्मुखी होना चाहिए, होना होता है। स्वामी जी महाराज ने तो उपासना के लिए भी लिखा है, पूजा के लिए भी लिखा है, अंतर्मुख होकर पूजा कीजिए। सो कितना महत्वपूर्ण ये शब्द है। बहिर्मुखी अब बात आसानी से समझ गए। इतनी सारी की सारी बहस को खुल रही हैं संसार के लिए। यदि यही इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाएं तो अंतर्मुखी होना कहा जाता है। इसी क्रिया के अंतर्गत कल ध्यान की चर्चा शुरू हुई थी। हम जहां तक पहुंचे थे, ध्यान हमेशा बैठ के आंख बंद करके, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल परमात्मा के आमने सामने और बिना हिले झुले। ये चार बातें स्वामी जी महाराज ध्यान के लिए शुरू में ही समझाते हैं। ध्यान के विद्यार्थी को, हर साधक को ये बातें याद रखनी चाहिए। जब आप खुली आंख भी कर सकते हो खुली आंख बंद आंख भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो, काम काज करते भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान हमेशा बैठ के एक साधक के लिए। जब आगे बढ़ोगे तो आगे जाके आपको स्वयं को ही महसूस होगा, ध्यान के लिए एक समय चाहिए, एक स्थान चाहिए, माला भी एक चाहिए, आसन भी एक चाहिए, मंत्र भी एक ही चाहिए। इस सब जैसी जैसी आप साधना में आगे बढ़ते जाओगे, इन बातों का बोध अपने आप होता जाएगा। बहुत सारे भेद साधना बढ़ती जाती है तो अपने आप खुलते जाते हैं। बात चल रही थी कि साधक को बैठना किस प्रकार से चाहिए, जहां से शुभ आरंभ होता है। जो साधक बच्चे हैं, बढ़ती आयु के युवतियां भी सब बराबर हैं, यहां पर अध्यात्म में कोई फीमेल या मेल इसका भेद बिल्कुल नहीं है, सब साधक हैं। जो बात कही जा रही है वह है, दोनों के लिए समान है। तो किस प्रकार से बैठना है, यदि बच्चे लोग युवक पद्मासन पर बैठ सकते हैं तो बहुत सुंदर, आसन के अपने लाभ भी बेटा मिलते हैं, हर आसन के अपने अपने लाभ हैं। वो हमारी सेहत को, हमारे स्वास्थ्य को मिलते हैं। यदि ऐसा न कर सको तो इसे चिंता का विषय नहीं बनाना। आप सुखासन पर बैठिए, जैसे अभी आप क्रॉसलेट बैठे हुए हैं ऐसे बैठिए। ऐसे बैठने के लिए यदि आपको दीवार का सहारा लेना पड़े तो संकोच नहीं करना, ध्येय अपना याद रखिएगा। उस ध्येय की प्राप्ति के लिए कुछ भी करना पड़े आपको कीजिएगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। दीवार का सहारा लेना पड़े लीजिएगा, जब तक छूटती नहीं, छूट जाए छोड़ दीजिएगा। जब ऐसा समय भी तो आएगा, आता है, जब डॉक्टर लोग नीचे बैठने के लिए मना कर देते हैं, आपको कुर्सी पर बैठना पड़ता है, बैठिएगा, मत संकोच कीजिएगा। जो डॉक्टर ने कहा है उसकी इच्छा के अनुसार यदि लाभ होता है तो लीजिएगा, कुर्सी पर बैठिएगा। बाकी तीन चार पॉइंट्स जितने भी हैं उनका ध्यान रखिएगा। एक और बात देखिएगा आप, जिसे सब कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, महिला भी, पुरुष भी, युवतियां भी सब कर सकते हैं, और सर्वाधिक लाभकारी जितना जो अभी आप जी के सामने बताया जाएगा, जितना उससे लाभ है उतना और किसी से लाभ नहीं होता। पद्मासन से भी नहीं लाभ होता, क्रॉसलेग तो हम बैठते ही हैं। ये हर साधक को करना चाहिए। जैसे मैं बैठा हूं, शरीर को थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा और उठा के अपने पांव की एड़ी, नीचे के दो छिद्र हैं उनके बीच रख दीजिएगा। बहुत आसान है देवी सज्जनों, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। ये देखने में या बतलाने में शायद कठिनाई है, अन्यथा कोई नहीं। जब अभ्यास हो जाता है तो आप बैठते ही ऐसे हो, कुछ नहीं करना पड़ता, फिर शरीर को ऊपर भी नहीं उठाना पड़ता। जैसे ही आप बैठोगे आपकी एड़ी अपने आप नीचे के जो दो छिद्र हैं उनके बीच जो स्थान है, अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यही स्थान है जहां कुंडलनी शक्ति कुंडलवार के अर्ध सर्पाकार मुड़ के घूम के तो बैठी हुई है, उस पर दबाव पड़ता है। यही स्थान है जहां मूलाधार चक्र है, मानो यहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये स्थान। फिर देखो देवी सज्जनों, कोई बिल्कुल कोई मुश्किल वाली बात नहीं, हर कोई कर सकता है, बच्चे से लेके बड़े तक। इनफैक्ट हरे को करना चाहिए। ये मात्र ऐसे बैठने से ही बहुत लाभ होता है। शरीर को थोड़ा सा उठा के तो एड़ी को बाएं दाएं जो भी आपको ठीक लगे, इन छोटी छोटी बातों में कोई हम योगा अभ्यास नहीं कर रहे, हम उसके विद्यार्थी नहीं है। हमें वह देखना है कि हमें क्या सूट करता है। सो इस टांग की एड़ी को नीचे के जो छिद्र हैं बिल्कुल उनके नीचे उसे रख दीजिएगा, या यूं कहिएगा आप उस एड़ी के ऊपर बैठिएगा, ऐसे बैठिएगा कि नीचे के जो छिद्र हैं वह एड़ी पर आ जाए, दबाव पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है, बैठने से ही बहुत आनंद महसूस होता है, किया कीजिएगा इसे, जितनी देर बैठ सके बैठिएगा, जितनी देर ध्यान में बैठना है उतनी देर बैठने का अभ्यास कीजिएगा। अब इधर आगे की बात शुरू होती है, यहां तक तो हो गया कि बैठना साधक को कैसे है। अब चार बातों में एक बात आपको कही गई है कि आपको बिना हिले जुले निश्चल बैठना है। इसका अर्थ ये है, अगला स्टेप है ध्यान से पहले आपको स्टिल बैठने का, निश्चल बैठने का अभ्यास करना है। कब तक अभ्यास करना है, कितनी देर तक अभ्यास करना है, जितनी देर तक आप ध्यान के लिए बैठना चाहते हो। सो सिंपल, 10 मिनट बैठना चाहते हो तो आपको 10 मिनट निश्चल बैठने का अभ्यास होना चाहिए, 15 मिनट तो 15 मिनट, आधा घंटा तो आधा घंटा, उससे भी ज्यादा तो उससे ज्यादा आपको बैठने का अभ्यास होना चाहिए। यहां पर जब आपको ये कहा जा रहा है कि आप निश्चल बैठिएगा, उस वक्त यदि आप अपने हाथों को, देखो मेरी तरफ सब, अपने हाथों को इस प्रकार से करके घुटनों पर रख देते हो तो तलवे की गर्मी घुटने को थकन नहीं देती, ये आपको निश्चल बैठने में सहायता देगी। कैसे बैठना है, अपने हाथों को इस प्रकार से घुटनों पर रखिएगा तो ये तलवे की गर्मी जो है वह घुटने को थकने नहीं देती। अभ्यास हो जाए 10 मिनट, जितनी देर भी आप बैठना चाहते हो, जब अभ्यास हो जाए तो फिर बेशक ऐसे बैठिएगा। इन मुद्राओं का देवी सज्जनों अपना अपना महत्व है। ध्यान के साधक होना, स्वामी जी महाराज ने हमारे लिए सब कुछ इतना आसान कर दिया हुआ है, जप करते जाओ, जप करते जाओ। काश हम जितना वो चाहते हैं, जितना वो कहते हैं उतना जप करें तो फिर हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर इतना होता नहीं है। हम गृहस्थ हैं, हमारा परिवार है, काम काज करने वाले हैं, सब कुछ वह भी करना है। यदि वह नहीं करते तो स्वामी जी महाराज बुरा मानते हैं, नहीं, परमात्मा द्वारा दिए हुए कर्तव्य हैं उनको निभाइए, जो नहीं निभाते वह स्वामी जी महाराज को, परमात्मा को अच्छे नहीं लगते, सच मानिएगा। यदि कोई घर बेकार बैठा हुआ है, अपनी पत्नी की कमाई पर खाता पीता है तो ये स्वामी जी महाराज को अच्छा नहीं लगता, परमात्मा को ये बातें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें किस लिए भेजा हुआ है, यदि तू कुछ करता ही नहीं है तो काम कर, काम करने के लिए तुम्हें भेजा हुआ है, बेकार अच्छा नहीं। स्वामी जी महाराज या तो आप होल टाइम साधक बनो, वह हर किसी के भाग्य में स्वामी जी महाराज ने नहीं लिखा हुआ, वह किसी किसी को ऐसा सौभाग्य स्वामी जी महाराज ने दिया हुआ है, हर एक नहीं है और हर एक कर भी नहीं सकता, कहीं ना कहीं अटका के रखा हुआ है संत परमात्मा ने, आप अटके रहो वहां पर, आप होल टाइम साधक बनने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप बन नहीं पाओगे, भरा लाभ आपको फिर भी हो सकता है। तो आप जिससे अर्ज की जा रही है ऐसे बैठिएगा, अभ्यास हो जाए फिर बेशक ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, ये दोनों इस जगह को प्रेस करें, ऐसे बैठिए। हरेक का अपना अपना महत्व है, हरेक का अपना अपना लाभ है। बहरहाल बैठने की बात यहीं समाप्त करते हैं, ऐसे बैठ के आगे क्या करना है, हम ध्यान शुरू करने जा रहे हैं, क्या करना है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, आप जी को कल कहा था स्वामी जी महाराज कहां शुरू करते हैं, परमात्मा को अपने अंग संग मान के झुक के प्रणाम करके सीधे होके बैठ जाता है। तो ये बातें बैठने संबंधी भी आपको स्पष्ट हो गए, कैसे बैठना है। स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसे बैठ के पीठ आपकी, रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। क्यों, ये क्या बात है, क्यों सीधी होनी चाहिए, इसलिए मूलाधार चक्र से ये जो नीचे के दो छिद्र हैं, देह स्थान जहां
कुंडलिनी ऐसे मुड़के जैसे सर्प बैठता है, अर्ध सर्पाकार कुंडली मुड़के बैठी हुई है। दबाव से जो आपने एड़ी से दबाव दिया हुआ है उससे, साधना से, ये धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति सीधी होती है। सीधी होके तो ये इसका स्वभाव है बेटा, ये ऊर्ध्वगामी है, इट गोज अपवर्ड्स। और इसे एक साधक को, हर साधक को इसे ऊपर की ओर चढ़ाना है, ऊर्ध्वगामी कहा जाता है, ऊपर चढ़ना है इसे। यदि आपने इसकी सहायता ना दी, इसको पूरी सहायता ना दी, सहयोग ना दिया, तो ये रुक जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है आपसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल परमात्मा के आमने सामने होनी चाहिए, ताकि वो कुंडली शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति भी इसे कहा जाता है, वह आध्यात्मिक शक्ति जिस वक्त ऊपर उठे तो उसे ऊपर जाने के लिए कोई रुकावट ना आए। ना बेटा, रुकावट आएगी, फर्ज करो आप यहां से झुके हुए हो तो यही रुकावट आ जाएगी, आपने गर्दन झुकाई हुई है तो गर्दन रुकावट आ जाएगी। अक्सर लोगों के दो जगह पर, साधकों के दो जगह पर रुकावट आती है, एक तो कमर झुकाने की आदत होती है, वही रुक जाती है ये। अब जब तक गुरु महाराज की चरणों में नहीं जाओगे, जब तक संत के शरण में नहीं बैठोगे, जब तक उनके साथ ध्यान में नहीं बैठोगे, तब तक ये फिर ठीक नहीं होने वाली। इसीलिए स्वामी जी महाराज अक्सर साधन सत्संगों पर बुलाते हैं, ये पता भी नहीं चलता साधक को, बेचारा अनभिज्ञ है, ये गुरु ही जान सकता है, संत ही जान सकता है कहां रुका हुआ है ये, कहां टिका हुआ है ये, वह फिर उस जगह से उसे ऊपर उठाता है। और कोई नहीं कर सकेगा, संत करेगा, जो शुक्र है, जिसको बोध है इस बात का, वही कर सकेगा, गुरु कर सकेगा, दूसरा कोई नहीं। साधक के लिए बहुत कठिन है इसको उपलब्ध करना, साधक से नहीं हो पाता, इसलिए वह बेचारा जहां है वहीं का वहीं टिका रहता है। दूसरी जगह जहां साधक की ये शक्ति रुक जाती है वह है ये जगह। ये जगह भी गर्दन अक्सर हमारी लटक जाती है, तो गर्दन लटकने से ये शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, ये वहीं रुक जाती है। ये तो दो स्थान है जहां आप अवॉइड कर सकते हो। एक और स्थान है दिव्य सज्जनों, क्योंकि हम सब ध्यान के साधक विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हर एक को ये बातें जानने की आवश्यकता है। अंत स्थान है ये नीचे वाले स्थान जो दो वर्णन किए गए हैं, कमर वाली जगह, गर्दन वाली जगह। यहां हो सकता है कि आपकी शक्ति अवरुद्ध ना हो, क्यों, आप नियमों का पालन कर रहे हैं, आपको जैसे कहा गया है वैसे आप कर रहे हो, अतएव आपकी शक्ति सीधी आके तो यहां आ गई है त्रिकुटी स्थान पर, आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र का स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान। स्वामी जी महाराज ने इसी चक्र को देखने के लिए कहा है, इसी स्थान को देखने के लिए कहा है, आपकी कुंडलनी शक्ति यहां आके टिक जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कुंडलनी शक्ति, सुषुम्ना नाड़ी, ईटा, पिंगला, तीन नाड़ियां नीचे से उठती हैं, तीनों पैरेलल चलती हैं, और पैरेलल चल के तो तीनों की तीनों यहां आके मिलती हैं, इकट्ठी होती हैं। अतएव ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है एक साधक के लिए, बहुत महत्वपूर्ण स्थान। इनका तीनों का मिलन भी यही होता है, आज्ञा चक्र भी यही है। यहां से आगे जाने के लिए डिस्टेंस बहुत कम है, इसको यहां से ऐसे मुड़ना है, पीछे की ओर जाके है ही पीछे, पीछे की ओर जाके तो इसे यहां तक आना है। कितना डिस्टेंस है, बहुत डिस्टेंस तो ट्रेवल कर चुकी है ये, लेकिन ये डिस्टेंस इतना ये साधक स्वयं ट्रेवल नहीं कर सकता। यहां पर गुरु की नितांत आवश्यकता, उसकी सहायता के बिना, उसकी प्रार्थना के बिना, ये कहा जाए उसकी कृपा के बिना, उसके आशीर्वाद के बिना नहीं होता। ऐसी शास्त्र की मान्यता है, मैं कोई अपने मुख से ये बातें नहीं कह रहा हूं, जो शास्त्र में लिखा गया है, जो वर्णित है, जो संत महात्माओं ने अपने अनुभव से कहा है, वही आपकी सेवा में कहा जाता है। इसके बाद आगे की यात्रा साधक स्वयं बहुत प्रयत्न करने के बाद भी तय नहीं कर पाता, जब तक गुरु महाराज की सहायता उसे न मिले। वह बातें बात की हो गई। अब बैठना कैसी है ये निश्चित हो गया, ऐसे बैठना है, क्यों बैठना है, किस लिए बैठना है, ये सब कुछ बेटा स्पष्ट हो गया। अब आगे स्वामी जी महाराज ने जो कहा फिर शुरू करते हैं। परमात्मा को अपने संग अपने अंग संग मान के सीधे होके बैठ के अब आंखें बंद कर देनी है। आंखें बंद करके ये देखें सब मेरी तरफ, आंख बंद करके तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, कई बार जब साधक बहुत थोड़े होते थे तो प्रेम जी महाराज स्वामी जी महाराज इस जगह को अपने अंगूठे से टच कर दिया करते थे। अब तो बहुत होते हैं सो ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन कुछ प्रेम जी महाराज स्वामी जी महाराज थोड़े थोड़े होते थे, दीक्षा लेने वाले एक दो तीन दीक्षा लेने वाले होते थे, ज्यादा से ज्यादा पांच हो गए, तो उन पांचों को सामने बिठाया हुआ होता था और पांचों को इस स्थान पर अपने अंगूठे से स्पर्श कर दिया करते, ये स्थान है जहां देखना है, आंख बंद करके तो इस स्थान को देखना है। अभी आपसे अर्ज की थी ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है, जो कुछ भी आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि बाहर मोमबत्ती देखी है यहां दिखाई देने लग गई तो आप समझने लग गए कि आपको तब लाइट दिखाई देने लग गई है, अधिष्ठान जी को देखा आप जी ने, अब आपको अधिष्ठान जी दिखाई देने लग गए तो अब आप कहने लगे कि हमें तो बहुत कुछ दिखाई देने लग गया है, ये तो जो बाहर देखा था वह देख रहे हो आप, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, मानो आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, इससे अधिक इसमें कुछ नहीं है। अभी आगे की यात्रा असली यात्रा तो शुरू नहीं हुई है, वह कब होगी, जब जो कुछ नहीं दिख रहा, जो कुछ बाहर नहीं देखा वह भीतर दिखाई देने लग जाए तो समझिएगा अब यात्रा का शुभ आरंभ हो गया है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं संत महात्मा दिखते भीतर, छोटी सी जगह, अब संत महात्मा यहां कैसे फिट होगा, एक देखते हैं संत महात्मा यहां देखते हैं, प्रकृति के दृश्य दिखते हैं, नदियां बहती दिखाई देती हैं, सागर दिखाई देता है इत्यादि इत्यादि, चंद्रमा दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है, इतनी व्यापक चीजें इतनी छोटी सी जगह में कैसी दिखाई देंगी, पर देती हैं, यही तो अध्यात्म है। तब समझिएगा आपकी आध्यात्मिक यात्रा ध्यान अवस्था जो है वह ठीक आगे बढ़ रही है। आंख बंद करके इस जगह को देखते हुए स्वामी जी महाराज कहते हैं, भीतर ही भीतर राम 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 उच्चारण कीजिएगा, मैं कुछ समय के लिए उच्च स्वर से राम 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 बोलूंगा, आप मेरे साथ ही साथ राम राम बोलते रहिएगा, मैं तो थोड़ी देर के बाद चुप कर जाऊंगा पर आपके अंदर राम राम गूंजता रहे, जब मैं कहूं तब आंख खोलना। स्वामी जी महाराज यहां कहते हैं मैं दो तरह से राम राम बोलूंगा, एक जल्दी जल्दी एक लंबा करके, आपको जो मीठा लगे बोलिए, दोनों मीठे लगे दोनों ढंगों से बोलिएगा पर भीतर ही भीतर बोलिएगा। इसके बाद स्वामी जी महाराज राम राम बोला करके आप सब सीधे होकर बैठ जाते, जो भी दीक्षा देने वाली है सब ऐसे बैठ जाते थे, स्वामी जी महाराज दो ढंग से राम राम बोलते और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ध्यान के बाद आंख खोलने के लिए कहते, तो आज फिर समय हो गया है, कल बैठेंगे ध्यान के लिए, कल सीधे ध्यान के लिए शुरू करेंगे, ये सब बातें कल नहीं कही जाएंगी, थोड़ा सा मामूली सा संकेत दे के तो कल ध्यान के लिए ही सीधे बैठेंगे, आपके ध्यान में बैठे बैठे ही मैं कुछ बातें और थोड़े समय के लिए बोलता रहूंगा, उसके बाद
मैं भी आपके साथ ध्यान में बैठ जाऊंगा। फिर थोड़ी देर के ध्यान के बाद बैठक समाप्त हो जाएगी, तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।